السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جی اب ہم درس تفسیر کی کلاس شروع کر رہے ہیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 ہی کی ابھی تفسیر ہماری چل رہی ہے، مکمل نہیں ہوئی تھی پچھلی دفعہ. تو اس میں ہم نے آپ کو اتنا پڑھا دیا تھا کہ تجسسو اور تحسسو میں کیا فرق ہے اور کیا کیا چیزیں تجسس کے اندر داخل ہیں. صحیح، کسی کو کوئی سوال ہے ان ٹاپکس کے اوپر؟ ظن کے بارے میں، گمان میں اور وسوسے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اگر آپ سے ہم سوال پوچھیں، آپ کی ذرا شمولیت ہو جائے کلاس میں. ایک چیز ہوتی ہے وسوسہ، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز ہوتی ہے گمان. ان دونوں میں کیا فرق ہوتا ہے، کوئی بتائے گا؟ کسی شخص کو آپ نے دیکھا، ٹھیک ہے، یا کسی سے آپ کی ملاقات ہوئی، اپنے کسی پرانے جاننے والے سے، رشتہ دار سے، تو اب اس کے بارے میں آپ کے ذہن میں کوئی بات آئی، تو اس کو وسوسہ کیا کب کہیں گے اور اس کو گمان کب کہیں گے؟ کیا شکل ہوگی اس بات کی، کیا حیثیت ہوگی اس کی کہ ہم اس کو کہیں گے کہ بھئی یہ وسوسہ ہے بس، اور کیا حیثیت ہوگی جب ہم اس کو کہیں گے کہ نہیں یہ گمان ہے؟ فرق کیا ہے بھائی ان دونوں میں، کسی کو بتائیں؟ یاد ہے کسی کو؟ بتایا تو تھا ہم نے. وسوسہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ اس سے بہت زیادہ واسطہ پڑتا ہے سب کو، اس وجہ سے نا معلوم ہونا چاہیے کہ وسوسہ کیا چیز ہے. برا خیال، تو پھر بدگمانی کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ بھی تو ایک برا خیال ہوتا ہے. بس فرق جو ہے نا وہ ان دونوں میں بس ڈگری کا فرق ہے. ڈگری سمجھتے ہیں؟ یعنی انٹینسٹی بھی کہتے ہیں، شدت بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، شدت کا فرق ہے ان دونوں میں، ٹھیک ہے. وسوسے کے اندر شدت جو ہوتی ہے نا وہ کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. وسوسے کی حیثیت جو ہے وہ بس ایک چلتے پھرتے خیال کی جیسی ہے، ٹھیک ہے، کہ بس کوئی بات جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آ رہی ہے، لیکن اس کی شدت زیادہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی وہ کوئی بہت ہی زیادہ نا پکی بات کے طور پر نہیں آ رہی آپ کے ذہن میں، بس ایسے ہی ایک وسوسہ پیدا ہو رہا ہے. مثال کے طور پر کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو ایک باقاعدہ ایک میڈیکل پرابلم ہے، یہ جس کو کہتے ہیں OCD، ٹھیک ہے، obsessive compulsive disorder. ٹھیک ہے، ان کو کیا ہوتا ہے، उनको हर वक्त ये वसवसा आता रहता है कि मेरा वुजू नहीं हुआ, मेरा वुजू नहीं। वो वुजू बनाते हैं लेकिन उनको इत्मीनान ही नहीं होता कि उनका वुजू हो गया, ठीक है ना। या उनको जो है वो वुजू बनाने के बाद बिल बहुत देर लगती है उनको वुजू करने में, ठीक है। लेकिन जब वो वुजू करके निकलते भी है ना, तो फिर भी उनको हर वक्त ये वसवसा आता रहता है कि अब टूट गया मेरा वुजू, अब टूट गया। अब वो फिर जाकर के वुजू बनाना शुरू हो गए, ठीक है ना। और सिर्फ वुजू में नहीं होता, इवन हाथ धोने में भी, कि मेरा हाथ अभी भी गंदा है, अभी भी गंदा है, अभी फिर जाकर के धोना शुरू हो गए, ठीक है। अभी भी गंदा है, फिर जाकर के धोना शुरू हो गए, ठीक है। तो इस तरह की जो है ना, उनको मुस्तकिल एक वसवसे आते रहते हैं, ठीक है। हर वक्त ही नमाज के अंदर वसवसे आ रहे हैं कि भाई अभी मैंने ये नहीं पढ़ा, ये नहीं किया, ये नहीं, ऐसे नहीं किया, ठीक है, ये चीज रह गई मेरी, वो चीज रह गई मेरी। मुस्तकिल जो है ना कोई उनका एक, यानी ये तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, बहुत ज्यादा वसवसे आना, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के ख्याल आते रहते हैं मुस्तकिल। लेकिन ये एक नॉर्मल आदमी के साथ भी होता है, ऑब्सेसिव नहीं होता, लेकिन ख्याल हर इंसान के जहन में आते रहते हैं, चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो उनको वसवसा कहते हैं कि उनकी बहुत ज्यादा शिद्दत नहीं होती आपके अंदर। लेकिन गुमान किस चीज को कहते हैं? गुमान कहते हैं कि जब ये जो ख्याल आया किसी के बारे में ना, अब इस ख्याल को आपने जमा भी लिया, जमा लिया अपने जहन में, यानी वो ख्याल आपके जहन में बैठ गया किसी के बारे में, इसको कहते हैं गुमान बना लेना, गुमान बना लेना, ठीक है, कि ये शख्स बुरा है, ठीक है। ये शख्स उसकी जाहिरी किसी शक्ल, जाहिरी कैफियत को देख करके, या कोई अमल उससे हमने एक देख लिया, तो उसकी बुनियाद पर आपने जहन में एक ख्याल बिठा लिया, ठीक है। यानी ख्याल तो वसवसे की शक्ल में आया आपके जहन में, लेकिन अब आपने उसको पकड़ करके ना कहा, चलो जी आओ इधर आके बैठ जाओ, मेरे दिमाग में बैठ जाओ, ठीक है ना। जैसे कुछ लोग आते हैं ना चलते फिरते, फिर वो इधर से आए उधर से निकल गए, लेकिन आपने किसी को पकड़ लिया, हाथ पकड़ के बिठा लिया अपने ड्राइंग रूम में, ठीक है ना। तो ड्राइंग रूम में बिठा लिया, ये ऐसे ही है जैसे आपने ख्याल को अपने दिमाग के ड्राइंग रूम में पकड़ के बिठा लिया, किसी के बारे में किसी ख्याल को बिठा लिया, इसको कहेंगे गुमान बना लिया आपने, ठीक है। तो वसवसे में और गुमान में यह फर्क है कि वसवसे तो हर वक्त ही आते रहते हैं, लेकिन वो आते हैं और बिलाखिर निकल ही जाते हैं, लेकिन गुमान को आपने जमा लिया होता है। तो जमाए जाने वाले ख्यालात को गुमान कहते हैं, ठीक है। लेकिन गुमान का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई ठोस दलील भी थी इस बात की, गुमान को जमाने के लिए ठोस दलील भी थी, नहीं, ठोस दलील नहीं है, बस ऐसे ही आपने उस गुमान को जमा लिया बगैर ठोस दलील के, ठीक है। तो ये डिफरेंस है वसवसों में और गुमान में, ठीक है। तो यहां पर अल्लाह ताला जिस जन की बात कर रहे हैं ना, ये इसी जन की बात कर रहे हैं, इसके लिए एक दूसरा लफ्ज भी इस्तेमाल होता है, वो गालिब गुमान, ठीक है ना, गालिब गुमान का लफ्ज भी इस्तेमाल होता है इसके लिए, ठीक है। तो इसकी चार किस्में पढ़ ली हैं, एक हराम, दूसरी मामूर भी और वाजिब, तीसरी किस्म मुस्तहब और चौथी किस्म मुबाह। इसकी तफसीलात अगर किसी को चाहिए हो तो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। तो उसके बाद वला तजस्सुसु का जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, तो उसको हम पढ़ रहे थे पेज नंबर 121 के ऊपर, 121 पेज पर, जो दूसरा पैराग्राफ है हदीस के नीचे, कि बयानुल कुरान में है कि छुपकर किसी की बातें सुनना या अपने को सोता हुआ बनाकर बातें सुनना भी तजस्सुस में दाखिल है, ठीक है। चुपके से किसी का फोन सुनना, ठीक है, या कमरे में बातचीत हो रही हो तो कमरे के दरवाजे के ऊपर कान लगा के खड़े हो जाना कि जरा अंदर से क्या सुने, क्या चीज है, क्या बात हो रही है, तो इसको भी तजस्सुस कहते हैं। तो इससे क्या है कि अलबत्ता अगर किसी से मुजर्रत पहुंचने का इहतमाल हो, मुजर्रत कहते हैं नुकसान, जरर, नुकसान, ठीक है। अगर किसी से नुकसान पहुंचने का इहतमाल हो, पॉसिबिलिटी हो, और अपनी या दूसरे किसी मुसलमान की हिफाजत की गर्ज से मुजर्रत पहुंचाने वाले की खुफिया तदबीरों और इरादों का तजस्सुस करे तो जायज है, ठीक है। ऐसी सूरत में तजस्सुस करना जायज है जब आपको मुजर्रत पहुंचने का एहतमाल हो। लेकिन ये एहतमाल से यहाँ पर मुराद जो है ना, वो वो शक नहीं है खाली। यानी भाई देखें, हर चीज में शिद्दतें होती हैं, इंटेंसिटीज होती हैं, ठीक है ना। अब ये एहतमाल जो है, ये एहतमाल भी जो है ना, ये कम एहतमाल, दरमियाने दर्जे का एहतमाल और शदीद एहतमाल, ठीक है ना। लफ्ज तो वही एहतमाल है, लेकिन इसके अंदर शिद्दतें मुख्तलिफ हो सकती है ना। एक हल्का सा एहतमाल हो गया आपको किसी शख्स के बारे में कि भाई वो मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है ना। अब आपने उस हल्के एहतमाल की बुनियाद पर उसका तजस्सुस करना शुरू कर दिया, तो यहाँ पर वो मुराद नहीं है। हल्का सा भी एहतमाल हो गया कि भाई हाँ वो, तो भाई वो हल्का एहतमाल किस बुनियाद पर होगा, ठीक है, वो वसवसे के बुनियाद पर होगा। वसवसा आ रहा है आपके जहन में किसी शख्स के बारे में कि वो जो है मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। अब इस वसवसे की बुनियाद पर आपने उसका तजस्सुस करना शुरू कर दिया, उसकी खोज लगानी शुरू कर दी, उसकी बातें सुनने के लिए जो है वो वायर टैप्स लगाने शुरू कर दिए। हत्ता कि आज के दौर के अंदर तो कितना आसान हो गया इस किस्म की हरकतें करना, ये कैमरे, ठीक है, बहुत ही बारीक, बहुत ही छोटे कैमरे जो हैं, जो कि आसानी से नजर नहीं आ सकते, ये बड़ी आसानी से दस्तियाब हैं। इंटरनेट के ऊपर जाकर के आप इन कैमरों को खरीद सकते हैं, और amazon.com के ऊपर ऐसे कैमरे शायद मिल जाएंगे, ठीक है। तो उनको आपने वहां से खरीदा और उसके बाद फिर आपने किसी के घर में लगा दिया, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कोई हमारे साथ ऐसा मामला, ठीक है ना, कितना बुरा मामला हो जाएगा ऐसे। अभी क्यों लगाया, क्यों लगाया आपने ऐसा कैमरा या ऐसी कोई लिसनिंग डिवाइस क्यों लगा दी? क्योंकि भाई मुझे एहतमाल था कि वो मुझे तकलीफ पहुंचा सकता है। अब इस एहतमाल की बुनियाद पर आपने उसकी जासूसी शुरू कर दी, ठीक है, आवाज सुननी शुरू कर दी, कैमरा लगा दिया या माइक लगा दिया, ठीक है। तो क्या ये चीज जायज हो जाएगी क्योंकि उसको एहतमाल हो गया था? भाई नहीं, जायज नहीं होगी, इसलिए कि वो शख्स जो है उसने अपने तौर पर ना एक घड़ लिया है इस एहतमाल को, नुकसान के एहतमाल को घड़ लिया है, ठीक है। वसवसे आ रहे थे उसको और उसने वसवसों की बुनियाद पर इतना बड़ा अमल कर लिया, किसी की जासूसी का इंतजाम कर लिया, ठीक है। तो ये जायज नहीं होगा कि हल्का सा भी एहतमाल हो जाए तो आप किसी की जासूसी शुरू कर दें। तो एहतमाल से यहाँ पर मुराद जो है ना, ये शदीद एहतमाल है, ठीक है, कि आपको बहुत शदीद एहतमाल हो कि हाँ ये शख्स जो है वो नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके लिए आपके पास कुछ ठोस दलील होनी चाहिए, ठीक है, कोई वाकई ऐसा कंफर्म बात होनी चाहिए कि ये मुझे नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। एक बात सुन लीजिए कि बहुत बदकिस्मती से, ये मैं बदकिस्मती की बात है, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली एक हकीकत नजर आती है कि इस दौर के अंदर जहां बहुत सारे गुनाह बढ़ गए हैं ना, ठीक है, इस बात से तो आप इनकार नहीं कर सकता ना कोई भी कि जी गुनाह जो है वो हमारे इस दौर में बहुत ज्यादा आम हो गए, कसरत हो गई है गुनाहों की, ठीक है ना। तो उसी तरीके से एक और भी मसला है इन गुनाहों की वजह से समझ लें, या दूसरी भी वजूहत शामिल है इसके अंदर, एक और भी बहुत बड़ा मसला है। वो क्या मसला है? वो है कि इस दौर के अंदर नफसियाती मरीज, नफसियाती मर्ज, ये भी बहुत बढ़ गया है। नफसियाती मर्ज, क्या कहते हैं अंग्रेजी में इसको? कहते हैं मेंटल इलनेस, मेंटल इलनेस, ये भी बहुत बढ़ गई है, ठीक है, कसरत हो गई है इस बात की, ठीक है। तो इस वजह से ना गुनाह, तो कहते हैं ना रूहानी बीमारी, गुनाह को क्या कहते हैं? रूहानी बीमारियों की वजह से इंसान गुनाह करता है, ठीक है। लेकिन अगर दिमागी बीमारी हो जाए, मेंटल इलनेस, तो मेंटल इलनेस की वजह से भी इंसान अजीबोगरीब किस्म के काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। तो ये डिप्रेशन, ये मेंटल इलनेस है। उसी तरीके से जो अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये एक मेंटल इलनेस है, ठीक है। उसी तरह जैसे ओसीडी वाला बंदा सफाई सुथराई के बारे में बहुत ज्यादा, यानी अजीबो गरीब हरकतें करना शुरू हो जाते हैं ना, उसी तरीके से ये जो वसवसों का बहुत ज्यादा शिकार हो जाए ना, तो फिर वो किसी को अपने वसवसों की बुनियाद पर नुकसान भी पहुंचाने पर उतर आता है, नुकसान पहुंचाने पर भी उतर आता है, जैसे कि तजस्सुस करना शुरू कर दें महज वसवसों की बुनियाद पर, ठीक है। तो ये चीजें यानी हमारे मुआशरे के अंदर आम होती जा रही हैं, तो इसकी शरीयत इजाजत नहीं देता, नहीं देती। अच्छा, इसके बारे में किसी को कोई सवाल है? वरना आगे चलते हैं कि तीसरी चीज, सवाल हो तो वो तो आप लिख देंगी, तो उसमें मुझे रुकने की जरूरत नहीं है, आपका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, तीसरी चीज जिससे इस आयत में मना फरमाया गया है, वो किसी की गीबत करना है, यानी उसकी गैर मौजूदगी में उसके मुतालिक कोई ऐसी बात कहना जिसको वो सुनता तो उसको ईजा होती, अगरचे वो सच्ची बात ही क्यों ना हो, क्योंकि जो गलत इल्जाम लगाए वो तो तुहमत है। यानी आपने किसी पर इल्जाम लगाया, जो बात उसमें नहीं थी वो आप कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर है या उसके अंदर है, तो इसको तुहमत लगाना कहते हैं। ये गीबत नहीं है, तुहमत है, जिसकी हुरमत अलग कुरान करीम से साबित है। ठीक है, और गीबत की तारीफ में उस शख्स की गैर मौजूदगी की कैद से ये ना समझा जाए कि मौजूदगी की हालत में ऐसी रंजदेह बात कहना जायज है। ठीक है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि कोई किसी की गीबत कर रहे हैं, तो जब हमें मना किया जाता है कि भाई ना करो, ये तो गीबत है, ना करो, इससे उसको तकलीफ होगी, तो हम क्या कहते हैं कि ये तो मैं उसके मुंह पर भी कह सकता हूँ, मैं तो मैं उसके सामने भी कह सकता हूँ। यानी अपनी दलेरी और हम अपना निडर होना जो है वो ऐसे बयान करते हैं। तो ये ना समझा जाए कि गीबत सिर्फ यानी गैर मौजूदगी के अंदर बुरी है, और सामने अगर उसको तकलीफ पहुंचाने वाली बात कही जाएगी तो वो बुरी नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो गीबत तो नहीं है मगर लम्ज में दाखिल है, लम्जुन, ठीक है, जिसकी हुरमत इससे पहले आयत में आ चुकी है। वला तलमिजू अनफुसकुम जो थी ना आयत नंबर 11 में, तो वहां पर वला तलमिजू से लम्स को अल्लाह ताला ने मना कर दिया। ठीक है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़ातिल लुमज़ा, वहां पर भी जो लुमज़ा से मना किया ना, तो वो लुमज़ा सामने किसी को बुरा भला कहना, ये लुमज़ा है और ये भी हराम है, और इसके ऊपर भी जहन्नुम की वादी की वईद आई है। जैसे बेमौका सच भी, कुछ लोग ऐसा भी है, हम लोग करते हैं ना, मतलब कुछ लोग से मुराद हम लोग ही हैं, मतलब तो कोई अलग सैारे की मखलूक नहीं होती, ये हम लोग ही ऐसी हरकतें कर रहे होते हैं। तो कहना चाहिए कि हम लोग ऐसा भी कर देते हैं कि कोई बात ऐसी होती है जो कि सच होती है, लेकिन उसको करने का भी मौका नहीं होता, बेमौका महल सच बोल देना, ये भी जो है ना वो तकलीफ पहुंचाने के का सबब बनता है, और इससे कोई फायदा नहीं हो रहा होता। तो इस वजह से ना ऐसे सच को जो है वो बोलने की बजाय खामोश रहना चाहिए, और मुनासिब मौके को तलाश करना चाहिए जब उस सच बोलने से फायदा हो। ठीक है, खाली सच मालूम हो जाना और उसको फिर बोल देना, ये कोई जरूरी नहीं है कि नहीं किया काम। और यहां पर बात उस मौके की नहीं हो रही कि जहां पर सच बोलना जरूरी है, ठीक है, और उससे किसी का नुकसान जो है वो दूर होता है, किसी का यानी तकलीफ में उसको फायदा होता है, ऐसे सच की बात नहीं हो रही, बल्कि ऐसे सच की बात हो रही है कि जिसको बोलने से किसी को बिला जरूरत तकलीफ होती हो, ऐसे सच को नहीं बोलना चाहिए, बल्कि मौके को तलाश करना चाहिए कि कब बोले, या ये कि किसी और अंदाज में उस सच को पहुंचाना चाहिए। जरूरी तो नहीं है ना कि हर सच जो है वो आप ही पहुंचाएं, आप किसी और के जरिए से भी तो पैगाम पहुंचा सकते हैं ना। ठीक है, तो किसी ऐसे शख्स को तलाश करें कि वो शख्स अगर इनको इनकी गलती के बारे में बताएगा तो इनको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, अगर मैं गलती के बारे में बता दूंगा तो उनको तकलीफ होगी, तो फिर ऐसे शख्स को तलाश करें कि जिसके जरिए से वो बात पहुंचाई जा सकती है। तो ये जो आयतें हैं ना, तो इनमें बिल्कुल हमारे घरेलू मामलात को अल्लाह ताला ने डिस्कस किया है। ठीक है ना, ये कोई बहुत बड़े बड़े मुल्की मामलात, सियासी मामलात वगैरह नहीं, बल्कि बिल्कुल ही हमारे आपस के घर के रिश्तेदारों के आपस के लेवल के जो मामला होते हैं ना, उनके बारे में ये हिदायत है। ठीक है, फिर उसके बाद अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीही मैतन, کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت نے کسی مسلمان کی آبرو ریزی اور توہین و تحقیر کو اس کا گوشت کھانے کی مثل و مشابہ قرار دیا ہے، اگر اس کے وہ شخص سامنے ہو تو ایسا ہے جیسے کسی زندہ انسان کا گوشت نوچ کر کھایا جائے۔ تو زندہ آدمی کو اپنے زبان سے تکلیف پہنچانا، یہ ایسے ہے کہ کسی زندہ انسان کا گوشت نوچ کر کھایا جائے، کیونکہ اس کو جو گوشت نوچنے سے تکلیف ہوتی ہے نا، ویسی ہی تکلیف جو ہے وہ اس کو الفاظ سے ہوتی ہے، حالانکہ الفاظ جو ہے وہ گوشت نہیں نوچ رہے ہوتے، لیکن تکلیف کی شدت جو ہوتی ہے وہ ویسی ہی ہوتی ہے۔ اس کو قرآن میں باللفظ لمزن تعبیر کر کے حرام قرار دیا ہے، جیسے کہ ابھی گزرا لا تلمزوا انفسکم پچھلی آیت میں، اور آگے آئے گا یعنی تیسویں پارے میں ویل لکل ہمزہ والی آیت آئے گی، ٹھیک ہے؟ تو لمزن کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور وہ آدمی اگر غائب ہو اس کے پیچھے اس کے متعلق ایسی بات کہنا جس سے اس کی آبرو میں خلل آئے، اس کی عزت خراب ہوتی ہو لوگوں کی نظر میں، اور اس کی تحقیر ہو، یہ ایسا ہے جیسے کسی مردہ انسان کا گوشت کھایا جائے، ٹھیک ہے؟ تو فرق نہ صرف زندہ اور مردہ کا ہے، زندہ انسان کا گوشت کھایا جائے یہ لمزن کے مترادف ہے، اور مردہ انسان کا گوشت کھایا جائے یہ غیبت کے مترادف ہے۔ کہ جیسے مردہ کا گوشت کھانے سے مردے کو کوئی جسمانی اذیت نہیں ہوتی، ایسے ہی اس غائب کو جب تک غیبت کی خبر نہیں ہوتی اس کو بھی کوئی اذیت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ اس کی غیبت کر رہے ہیں تو اس کو تکلیف بھی نہیں ہوگی، جیسے مردہ انسان کو کچھ بھی کیا جائے تو اس کو تکلیف نہیں ہوتی، اس لیے کہ روح تو اس کی نکل چکی ہوتی ہے بدن سے، ٹھیک ہے؟ تو اس سے بھی کیا پتہ لگا کہ اگر بدن میں، یعنی بدن میں روح ہی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کو سکون ملتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، اگر روح نہ ہو تو نہ تو سکون ملے گا اور نہ تکلیف ہوگی، بلکہ وہ مردہ جسم کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ مگر جیسا کسی مردہ مسلمان کا گوشت کھانا حرام اور بڑی خصت و دنات کا کام ہے، اسی طرح غیبت بھی حرام، غیبت حرام بھی ہے اور خصت و دناعت بھی، کہ پیٹ پیچھے کسی کو برا کہنا کوئی بہادری کا کام نہیں ہے۔ دناعت کا مطلب وہی خصت، یعنی بہت ہی خصیص قسم کی بات، بہت ہی کم درجے کی ذلیل قسم کی حرکت، تو اس کے لیے خصت و دناعت کا لفظ استعمال کیا ہے کہ بھائی سامنے آ کر کے ذرا برائی کر کے تو دکھائیں، وہ آگے سے منہ توڑ جواب دے گا تو آپ اس ڈر سے جو ہے نا خالی پیٹ پیچھے اس کی برائی کرتے ہیں، سامنے برائی نہیں کرتے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے یعنی اتنے شدید الفاظ سے منع کر دیا۔ مزید یہ کہ اگلے پیج کے اوپر جو فرماتے ہیں کہ اس آیت میں زن اور تجسس اور غیبت تین چیزوں کی حرمت کا بیان ہے، تینوں چیزوں کو حرام قرار دیا نا، مگر غیبت کی حرمت کا زیادہ اہتمام فرمایا کہ اس کو کسی مردہ مسلمان کا گوشت کھانے سے تشبیہ دے کر اس کی حرمت اور خصت و دناعت کو واضح فرمایا، ٹھیک ہے؟ کیوں غیبت کے لیے کیوں یہ والی مثال دی، باقی دو چیزوں کے لیے ایسی کوئی شدید مثال نہیں دی، کوئی مثال نہیں دی، بلکہ تو اس کی حکمت یہ ہے کہ کسی کے سامنے اس کی عیوب ظاہر کرنا بھی اگرچہ ایزا رسانی کی بنا پر حرام ہے، مگر اس کی مدافعت وہ آدمی خود بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ خود اپنا دفاع کر سکتا ہے، بول دے کوئی ایکسپلینیشن دے دے، آپ کی بات کو جو ہے وہ غلط ثابت کر دے، ٹھیک ہے؟ تو وہ کر سکتا ہے اگر آپ اس کے سامنے اس کی برائی کریں، ٹھیک ہے؟ اور مدافعت کے خطرے سے ہر ایک کی ہمت بھی نہیں ہوتی، اور وہ عادتاً زیادہ دیر رہ بھی نہیں سکتا، یعنی آپ نے جو اس کو تکلیف پہنچائی تو اب یہ تکلیف جو ہے نا وہ مدافعت کر کے، اپنی ڈیفینس کر کے وہ تکلیف دور بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو سامنے برا کہنا جو ہے کسی کو وہ اتنا شدید نہیں ہوتا، بخلاف غیبت کے کہ وہاں کوئی مدافعت کرنے والا نہیں، ہر کمتر سے کمتر آدمی بڑے سے بڑے کی غیبت کر سکتا ہے، اور چونکہ کوئی مدافعت نہیں ہوتی اس لیے اس کا سلسلہ بھی عموماً طویل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ کوئی ڈیفینڈ کرنے والا نہیں ہوتا تو اس کو بڑے لمبے عرصے تک لوگ کرتے رہتے ہیں غیبت، اور اس میں ابتلا بھی زیادہ ہے، اس لیے غیبت کی حرمت زیادہ مؤکد کی گئی، ٹھیک ہے؟ یعنی ज्यादा लोग इसमें मुब्तला हो जाते हैं गीबत के अंदर, ठीक है। तो उसको ज्यादा फिर ताकीद के साथ, यानी मुर्दा इंसान, मुर्दा भाई का गोश्त खाने से इसको तशबीह दी गई, ताकि ज्यादा ये बात इंपॉर्टेंट हो जाए हमारे लिए कि कितनी बुरी है ये। आम मुसलमानों पर लाजम किया गया कि जो सुने वो अपने गायब भाई की तरफ से बशर्ते कुदरत मुदाफियत करे, ठीक है। अब यानी अब क्या बात हो रही है कि अगर कोई गीबत सुने, ठीक है, क्योंकि गीबत सुनना भी हराम है, सिर्फ करना हराम नहीं है बल्कि सुनना, तो आप करें क्या? अगर कोई दूसरा शख्स किसी तीसरे शख्स की गीबत करना शुरू कर दे आपके सामने, तो आप क्या करें? तो उसका हल बता रहे हैं कि अगर आपके पास कुदरत है, यानी इतनी ताकत है आपके पास, जुबानी ताकत, ठीक है, कि आप मुदाफियत कर सकते हैं जिसकी गीबत की जा रही है उसकी, तो आप मुदाफियत करें, डिफेंस करें उस शख्स का। और अगर मुदाफियत पर कुदरत ना हो तो कम से कम उसके सुनने से परहेज करें, क्योंकि गीबत का बकसद व इख्तियार सुनना भी ऐसा ही है जैसे खुद गीबत करना, ठीक है ना। अपनी मर्जी से अपने खुशी के साथ गीबत को सुनना, ये गीबत करना ही है, ठीक है, गीबत करने के जैसा ही है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब कि मुदाफियत की ताकत हो तो उसको रोक दें? इसका मतलब ये है कि जो गीबत कर रहा है उसको मना कर दें कि देखो गीबत ना करो, उस शख्स की बुराई ना करो, ठीक है, वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो तुम जो ये काम कर रहे हो तो इससे उसकी इज्जत खराब हो रही है, तुम्हारी आखिरत खराब हो रही है और मेरी भी आखिरत खराब हो रही है, ठीक है। ये हराम चीज जो है ये हम तीनों को नुकसान पहुंचा रही है, उस तीसरे शख्स को भी, तुमको भी और मुझको भी, तो रुक जाओ इस बात से, ठीक है। तो इसको कहेंगे कि आपके पास ऐसे बात कहने की कुदरत है, आप अगले बंदे को अपनी जुबान से रोक सकते हैं। मारने पीटने की बात नहीं हो रही, फिजिकल हो जाने की बात नहीं हो रही, सिर्फ जुबान से रोकने की बात हो रही है, क्योंकि गीबत जो है ये एक जुबानी गुना है, ठीक है, तो इसको जुबान से ही रोकना होता है। लेकिन अगर आप उस शख्स को रोक नहीं सकते, मिसाल के तौर पर गीबत करने वाला जो है वो आपसे बड़ा है, ठीक है, मुकाम मर्तबे में बड़ा है, या फिजिकल ताकत में बड़ा है, या मालो दौलत की वजह से इतना बड़ा है कि वो आपको जो है ना वो कोई बड़े शर में मुबतला कर सकता है, ठीक है, बड़े शर में मुबतला कर सकता है, या ये कि उसका मुकाम मर्तबा ऐसा है कि आप उसको ऐसे क्लियरली जो है वो मना नहीं कर सकते। इसकी क्या मिसाल है मकाम मर्तबे में बड़े होने की? कि जैसे कि आपकी बूढ़ी वालदा वालदा है, ठीक है, अब बूढ़ी वालदा जो है वो, उनको ये सारी बातें नहीं पता, उनको क्या हराम है क्या हलाल है इसकी इतनी परवाह नहीं है, तो अब जब वो आकर के बैठती है ना आपके पास, तो वो शुरू कर देती हैं गीबतें, खानदान वालों की गीबतें, बहू की गीबतें और फलानी की गीबतें, और राइट, तो आप वालदा को कैसे रोकेंगी? वालदा को आप सख्ती से डांट करके नहीं रोक सकती, ठीक है ना, नहीं रोक सकती वालदा को। उसी तरीके से शौहर, ठीक है, बीवियों के शौहर होते हैं कुछ, शौहर जिन घरों के अंदर गालिब होते हैं, जरा जोर जबरदस्ती वाले शौहर होते हैं, तो बीवियां फिर उन घरों के अंदर दब के रहती हैं ऐसे शौहरों से, ठीक है। अब शौहर साहब ने गीबत शुरू कर दी, अब ये जो दबी हुई बीवी है, ये हर घर में ऐसा नहीं होता, बीवियां हर घर में नहीं दबी हुई होती, ठीक है, लेकिन जिन घरों में दबी हुई होती हैं वहां पे अगर शौहर ने गीबत करनी शुरू कर दी तो बीवी डांट करके शौहर को नहीं रोक सकती, ठीक है, कि आप गीबत ना करें, राइट, वो आगे से उसने जो है वो बहुत ही बुरा मामला करना है बीवी के साथ, ठीक है। तो ये मुकाम वो कहलाएगा जिसमें कि आपके पास कुदरत नहीं है, ठीक है, मकाम मर्तबे की वजह से गीबत करने वाले की आपके पास उसको रोकने की कुदरत नहीं है। तो अब क्या करें? ठीक है, अब दो काम कर सकते हैं आप, ठीक है। एक काम तो ये है कि आप उनको रोक तो नहीं सकते, यानी सराहतन मना करके आप उनको रोक तो नहीं सकते, ऐसे लोगों को, माँ को नहीं रोक सकते, बाप को नहीं रोक सकते, शौहर को नहीं रोक सकते, ठीक है। कभी उस्ताद साहब ने आकर गीबतें शुरू कर दी, तो अगर उस्ताद साहब का आपके दिल में मुकाम मर्तबा है, ठीक है, तो आप उस्ताद साहब को भी नहीं रोक सकते, ठीक है, तो फिर क्या करें? इसका एक तरीका ये होता है कि आप उनको, उनकी तवज्जो को हटाने की कोशिश करें, यानी कोई और बात छेड़ दें, डिस्ट्रैक्ट कर दें उनको, ठीक है, खुसूसन बूढ़े माँ बाप जो होते हैं ना, उनको डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है, ठीक है, जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं ना उनको डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है, उसी तरीके से बूढ़े माँ बाप को भी डिस्ट्रैक्ट किया जा सकता है, उनकी तवज्जो किसी दूसरे काम में लगा दें या किसी दूसरी बात, अरे 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 छोड़े भी अम्मी, अरे छोड़े भी उसके बारे में उसने जो ऐसे किया ना तो बड़ा जबरदस्त काम था, और फिर उससे इतने ये फायदे हो गए और उससे ये हो गया, फिर वैसे हो गया, या कोई कहानी सुनाना शुरू कर दे उनको किसी और वाकई की, या कोई बचपन की बात जो है वो, अरे अम्मी आपको याद है कि जब आपने ऐसे मुझे कहा था तो फिर मैंने क्या किया था और फिर ये क्या हुआ था, वैसे क्या हुआ था, राइट। तो ये जो बूढ़े माँ बाप होते हैं ना, इनकी हैसियत भी बच्चों की जैसी हो जाती है, उनकी यानी अंदाज भी ना बच्चों के जैसा हो जाता है, अगर आप उनकी तवज्जो को हटा देना तो अब उनको याद नहीं रहता, ठीक है, कि वो क्या बात कर रहे थे, तो उनकी तवज्जो हट जाएगी, वो दूसरी बात करना शुरू कर देंगे, ठीक है। शौहर को, कुछ बीवियां जो अकलमंद होती हैं वो शौहर की तवज्जो भी हटाना जानती हैं, कैसे शौहर की तवज्जो हटाई जा सकती है, ठीक है, लेकिन ये कब करेंगी वो, ये उसी वक्त करेंगी ना जब वो गीबत को शदीद गुनाह समझती होंगी और गुनाह की नफरत उनके दिल में होगी, तभी तो वो अपने शौहर की तवज्जो हटाने की कोशिश करेंगी। लेकिन अगर उनके दिल में कोई गुनाह की हैसियत ही नहीं है, ठीक है, गीबत को गुनाह समझती नहीं है, या खुद जो है वो मजे लेना शुरू कर दें उसके गीबत के, तो फिर वो क्यों शौहर की बात को यानी शौहर की तवज्जो हटाने की कोशिश करेंगी, ठीक है। इसी वजह से कुरान हमें बार बार इन गुनाहों की शिद्दत को याद दिलाता रहता है, ताकि हम जो है ना वो मौका जब आए तो उस वक्त इस गुनाह से हटने की कोशिश करें, ठीक है। तो एक तरीका तो फिर ये होता है कि आप तवज्जो हटाने की कोशिश करें, लेकिन कभी ऐसा होता है कि तवज्जो हटाना जो है ना वो मुमकिन नहीं होता, हमारे जहन में कोई ऐसा आइडिया नहीं आता जिससे कि उनकी तवज्जो हटा सकें, या ये कि तवज्जो हटाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो साहब भी माशाल्लाह बड़े डटे हुए हैं अपने अमल के ऊपर, तो वो छोड़ ही नहीं रहे उस बात को, टॉपिक को छोड़ ही नहीं रहे, अब क्या करें भाई, ठीक है। तो कभी तो ये होता है कि उठ के चले जाना मुमकिन होता है, लेकिन अक्सर ऐसे मामलात में उठ के आप जा नहीं सकते, ठीक है ना, वो अगर आप उठ के चले गए तो फिर एक बड़ा फसाद क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, स्पेशली शौहर के साथ अगर उठ के चले गए, ठीक है, तो बड़ा फसाद क्रिएट हो जाएगा, तो उस फसाद को भी आपने रोकना है, तो अब आप क्या करें, फंसे हुए हैं नहीं जा सकते और उनको रोक भी नहीं सकते और उनकी तवज्जो भी नहीं आप हटा सकते, अब क्या करें भाई, तो अब जो है ना कम से कम दर्जा ईमान का क्या है, आप जरा बताएं फिर क्या करना पड़ेगा, ईमान का सबसे जो कम दर्जा है उस दर्जे पर अमल करना होगा, वो क्या है, दिल में बुरा समझना, ठीक है, बिल्कुल सही फरमाया, दिल में बुरा समझना, ठीक है, ये जो दिल में नफरत करना है ना किसी चीज से, ठीक है, दिल में नफरत करना ये एक बहुत बड़ा अमल है, वैसे तो ईमान का सबसे कम दर्जा है, ठीक है, लेकिन हकीकत में ये बहुत बड़ा अमल है, ठीक है, किस तरह से बड़ा अमल है कि इसका बड़ा असर होता है, बड़ा असर होता है दिल में किसी चीज को बुरा समझना, इसकी ना दोनों शक्लें सुनने, एक शक्ल तो अभी गीबत की बात हो रही है, ठीक है, कि गीबत जैसा शदीद गुनाह वाला अमल हो रहा है लेकिन आप उसको दिल में शदीद बुरा समझ रही हैं, बहुत आपको नफरत हो रही है, कराहियत फील हो रही है दिल के अंदर, क्यों गीबत कर रहा है ये शख्स, क्यों मुझे गीबत सुननी पड़ रही है, तो इससे अल्लाह ताला क्या करते हैं, अल्लाह ताला उस दिल की हिफाजत कर देते हैं, दिल की हिफाजत, और हिफाजत कैसे करते हैं, एक रूहानी पर्दा उस दिल के ऊपर चढ़ा देते हैं, रूहानी पर्दा, एक बाकायदा उसके ऊपर ना एक शील्ड चढ़ा देते हैं, उस शील्ड से क्या होता है कि ये जो गुनाह है ना उसके असरात जो दिल के अंदर दाखिल हो रहे थे वो असरात दाखिल होने से रुक जाते हैं, अब वो नहीं दाखिल हो सकते क्योंकि एक पर्दा चढ़ चुका है उसके ऊपर, ठीक है, तो बुराई का असर जो है वो आपके दिल में नहीं आ सकता इस बुरा समझने की वजह से, इस कराहियत की वजह से, ठीक है ना, और यही मामला जो है वो दूसरी सिमत में भी होता है, दूसरी सिमत में कैसे होता है कि जब कोई बहुत अच्छा मामला हो रहा हो, बहुत अच्छी सोहबत में आप बैठे हुए हों लेकिन दिल के अंदर उसको बुरा समझते हो, दिल में बुरा समझते हो लेकिन जिस्मानी तौर पर आप उस सोहबत में बैठे हुए हैं, नेकों की सोहबत में बैठे हुए हैं, अल्लाह के ولیوں کی صحبت میں بیٹھے ہوئے، لیکن دل میں نہ آپ ان سے نفرت کرتے ہیں، ان اولیاء سے، ان نیکوں سے، تو کیا ہوگا؟ ان کی صحبت کا جو اچھا اثر آپ کے دل پر پڑنا تھا وہ اس نفرت کی وجہ سے نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اس نفرت کی وجہ سے نہیں پڑے گا، کیونکہ آپ کی اس نفرت کی وجہ سے دل کے اوپر ایک پردہ چڑھ گیا ہے، پردہ چڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب یہ پردہ چڑھ گیا ہے نا، تو اب ان کے جو اچھی صحبت کے اثرات ہیں وہ اس دل کے اندر داخل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے نبی علیہ السلام کی صحبت میں منافقین آ کر کے بیٹھتے تھے لیکن ایمان سے محروم رہتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ بہترین باتیں سنتے تھے، جن سے کہ بہترین باتیں اور کوئی ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ان منافقین کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو دل کے والے جو یعنی یہ جو عمل ہے نا، اس کا اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے کہ ہم گناہ کے اثرات سے بچ سکتے ہیں، اگرچہ کہ ہمارے چاروں طرف گناہ ہو رہا ہو، لیکن ہم ان سے بچ سکتے ہیں، اپنے دل کو بچا سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے دوسری طرف بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہے کہ جی کیا کریں اگر کوئی غیبت کر رہا ہے ہمارے سامنے، تو اس میں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جی جیسے انہوں نے لکھا کہ عام مسلمانوں پر لازم کیا گیا ہے کہ جو سنے وہ اپنے غائب بھائی کی طرف سے بشرط قدرت مدافعت کرے، اور اگر مدافعت پر قدرت نہ ہو تو کم از کم اس کے سننے سے پرہیز کرے، یعنی اٹھ کے چلا جائے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ غیبت کا بقصد و اختیار سننا بھی ایسا ہی ہے جیسے خود غیبت کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اب تو ہم نے تو آپ کو ان کیسز کے علاوہ کے کیسز بتائے کہ جب آپ مدافعت بھی نہ کر سکتے ہو، اٹھ کے بھی نہ جا سکتے ہو، تو پھر کیا کریں، ٹھیک ہے؟ ڈسٹریکشن یا دل سے برا سمجھنا۔ اس کے بعد غیبت کے متعلق مسائل، حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک روز خواب میں نے دیکھا کہ ایک زنگی کا مردہ جسم ہے، اور کوئی کہنے والا ان کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کھاؤ، ٹھیک ہے؟ زنگی ایک جگہ ہے جہاں کے رہنے والوں کو زنگی کہا جاتا ہے، جیسے مشہور نام ہے حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی سے پہلے جو بادشاہ تھے نور الدین زنگی، تو یہ اسی جگہ کے کسی بندے کی بات ہو رہی ہے۔ تو میں نے کہا کہ اے خدا کے بندے، میں اس کو کیوں کھاؤں؟ تو اس شخص نے کہا، اس لیے کہ تو نے فلاں شخص کے زنگی غلام کی غیبت کی ہے۔ میں نے کہا کہ خدا کی قسم، میں نے تو اس کے متعلق کوئی اچھی بری بات کری ہی نہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ ہاں، تم نے واقعی نہیں کری کوئی اچھی بری بات، لیکن تو نے اس کی غیبت سنی تو ہے اور تو اس پر راضی رہا، یعنی تو نے اپنے دل کی خوشی کے ساتھ اس غیبت کو سنا تھا، ٹھیک ہے؟ تو اب چونکہ تو نے اس غیبت کو سنا تھا، تو اب تم اس مردہ انسان کا گوشت کھاؤ، یہ ان کو خواب میں دکھایا گیا۔ حضرت میمون رحمت اللہ علیہ کا حال اس خواب کے بعد یہ ہو گیا کہ نہ خود کبھی کسی کی غیبت کرتے اور نہ کسی کو اپنی مجلس میں کسی کی غیبت کرنے دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ یعنی ان کے مجلس میں یا ان کے صحبت میں کوئی دوسرا آ کر کے بیٹھ کے غیبت کرنا شروع کرتا نا، تو اس کو روک دیتے تھے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے تھے حضرت میمون رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے؟ تو ان سے ایک دفعہ غلطی ہو گئی کہ انہوں نے رضا کے ساتھ کسی کی غیبت سن لی، اپنے دل کی رضا کے ساتھ۔ تو دیکھیں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو کہ محنت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہتے ہوں، ان سے اگر غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کا بندوبست فرما دیتے ہیں۔ ان کا بندوبست کیسے کیا؟ خواب دکھلا دیا، اور خواب کے اندر جب انہوں نے یہ باتیں دیکھی اور سنی تو طبیعت جو ہے وہ مطلب انہوں نے توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے بچ گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ انتظام اللہ کی طرف سے ہوا نا ان کی توبہ کا۔ اسی طریقے سے اگر ہم بھی ایسی محنت کریں گے نا، محنت کر کے نیکی کو اختیار کرنا اور گناہوں سے بچنا، ٹھیک ہے، کوشش کریں گے، تو اگر ہم سے غلطی بھی کبھی ہو گئی نا اور ہمیں اس وقت خیال نہیں آیا، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی میسج کہیں نہ کہیں سے ہمیں ایسے پہنچوائیں گے کہ ہمیں یاد آ جائے گی اپنی غلطی اور ہم اس سے توبہ کر لیں گے۔ جیسے عمومی طور پر ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے، آپ کے ساتھ یقین ہوتا ہوگا کہ کوئی بیان سن رہے ہوتے ہیں اور وہی بات، وہی غلطی جو ہم نے کری ہوتی ہے تھوڑی دیر پہلے، اسی کا ذکر بیان میں آ جاتا ہے، رائٹ؟ تو پھر توبہ کر لیتے ہیں، رائٹ؟ तो ये इंतजाम अल्लाह की तरफ से होता है ना, हालांकि हमने कोई खास सोच करके तो वो बयान नहीं लगाया था कि इस बयान के अंदर वही वाला टॉपिक डिस्कस होगा कि जो कि हमसे अभी हुआ है। हमें कुछ नहीं पता होता कि उस टॉपिक उस बयान में क्या होने वाला है, अल्लाह की तरफ से ये मामला होता है। उसी तरह किताब अल्लाह ताला कोई पढ़वा सकते हैं, या कोई घर का बच्चा कोई ऐसी बात आकर के कर देता है कि जिसकी वजह से हमें अपने उस गलती का एहसास हो जाता है। तो ये अल्लाह की तरफ से इंतजाम होते हैं ईमान वालों के लिए। हदीस में हजरत अनस बिन मालिक की रिवायत है कि शब मेराज की हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे ले जाया गया तो मेरा गुजर एक ऐसी कौम पर हुआ जिनके नाखून तांबे के थे, ब्रॉन्ज के बने हुए नाखून थे, और वो अपने चेहरों और बदन का गोश्त नोच रहे हैं। मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन लोग हैं? आपने फरमाया कि वो लोग हैं जो अपने भाई की गीबत करते और उनकी आबरू रेजी करते थे। ठीक है, तो कयामत के दिन उनके भाइयों को मार करके इनके सामने नहीं रखा गया कि अब इनका गोश्त खाओ, बल्कि इनको ऐसा बना दिया गया कि ये खुद अपना गोश्त नोचना शुरू हो, क्योंकि भाई जो है वो तो शायद जन्नत में पहुंच गया होगा। ठीक है, तो भाई को क्यों तकलीफ दी जाए भाई इनको सजा देने के लिए, तो अपने ही गोश्त को नोचेंगे। हजरत अबू सईद और जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अलगीबतु अशद्दु मिन अज़्ज़िना, यानी गीबत ज़िना से भी ज्यादा सख्त गुनाह है। सहाबा किराम ने अर्ज किया कि ये कैसे? ज़िना तो इतना शदीद गुनाह है कि उसके ऊपर रजम की सजा दी जाती है और सब जो है वो उससे नफरत करते हैं। ठीक है, तो ये गीबत जो है वो ज़िना से ज्यादा कैसे गुनाह, बड़ी गुनाह हो गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स जिना करता है फिर तौबा कर लेता है तो उसका गुनाह मुआफ हो जाता है, और गीबत करने वाले का गुनाह उस वक्त तक मुआफ नहीं होता जब तक वो शख्स माफ ना करे जिसकी गीबत की गई है। ठीक है, तो आपने यकीनन सुना होगा कि गीबत जो है वो हुकूकुल इबाद में से है। ठीक है, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन ये कभी सुना था कि जिना करना जो है ये हुकूकुल लाह में से है, ये हुकूकुल इबाद में से नहीं है? भाई क्यों नहीं है हुकूकुल इबाद में से, हालांकि इसमें भी तो एक दूसरा शख्स इन्वॉल्व होता है, तो ये हुकूकुल इबाद में से क्यों नहीं है? क्योंकि जिना जो किया जाता है वो दूसरे शख्स की मर्जी के साथ किया जाता है, कंसेंट शामिल होती है उसके अंदर। ठीक है, तो अब उससे आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसने अपनी मर्जी से गुनाह किया, आपने अपनी मर्जी से गुनाह किया, तो अब आपको उससे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। लेकिन गीबत में जो आपने उस दूसरे बंदे के साथ की जो गीबत करी ना, तो उसमें वो अपनी मर्जी से तो शामिल नहीं था कि हाँ भी आओ मेरी मेरी गीबत करो, मेरे बारे में लोगों को बुरा बुरा भला कहो। ठीक है, उसकी तो मर्जी शामिल नहीं थी, तो जब उसकी मर्जी शामिल नहीं थी तो आपने उसकी मर्जी के खिलाफ काम किया। ठीक है, तो ये हुकूकुल इबाद इस तरह से हुकूकुल इबाद की खिलाफ वर्जी बन गई। ठीक है, तो इसके अंदर फिर उस बंदे से माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक है, एक और बात ये कि जहन में बात आती है कि नबी अलैहि सलाम ने किसी और गुनाह से इसको शदीद क्यों नहीं कहा? और भी तो गुनाह ऐसे हैं कि जिनसे लोग नफरत करते हैं, शराब पीने वाला गुनाह, उससे भी तो लोग नफरत करते हैं। तो अगर इस तरह से कह देते अलगीबत तो अशद्दु मिनल खमर, ठीक है, यानी खमर से ज्यादा गुनाह, ज्यादा बुरा गुनाह है गीबत करना, ठीक है, तो जिना का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया? ठीक है, उसकी कोई वजह बता सकता है? किसी के जहन में अगर इसकी हिकमत आती हो, कोई पॉसिबल हिकमत कि जिना से क्यों उसको कंपेयर किया? और भी तो गुनाह है, किसी और गुनाह से क्यों नहीं कंपेयर किया इसकी शिद्दत बताने के लिए? शराब पीना भी बहुत बुरा गुनाह है और जुआ खेलना भी बहुत बड़ा गुनाह है, सूद कारोबार करना तो पता ही है आपको कितना बड़ा गुनाह है, राइट? अल्लाह और उसके रसूल के ऐलान जंग हो जाता है, तो सूद से क्यों नहीं इसको कंपेयर कर दिया? अगर इतनी इसकी शिद्दत बयान करनी थी तो सूद से कंपेयर कर देते, जना से क्यों कंपेयर किया इसको? अल्लाह ताला की मखलूक को बुरा कहना क्या मतलब है? मैं तो आपसे खास ये बोल रहा हूँ कि जिना से क्यों कंपेयर किया? तो एक हिकमत जो इसके पीछे हो सकती है, ठीक है, वो ये हो सकती है कि देखें यहां पर बात किससे हो रही है? ईमान वालों से। जिना हराम है तो क्या सूद हराम नहीं है, जुआ हराम नहीं है? वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि भाई हराम तो और भी चीजें हैं, और बड़ी शदीद दर्जे की हराम है सूद खाना, ठीक है ना, तो सूद से भी कंपेयर कर देते हैं यहाँ पर, तो जिना से क्यों कंपेयर किया? उसकी वजह ये समझ में आती है कि ईमान वालों से बात हो रही है ना, ईमान वालों को मना किया जा रहा है, ठीक है। तो ये जो गीबत वाला गुना है ना, इसमें कसरत से कौन मुब्तला होता है? मर्दों और औरतों में अगर आप इंसाफ से देखें तो कौन ज्यादा मुब्तला होता है गीबत के अंदर? मर्द नहीं होता, ठीक है ना, ज्यादा होता तो है मर्द भी, लेकिन ज्यादा गीबत जो है वो औरतों में नजर आती है, ठीक है ना, ये सब जानते हैं इस बात को। आपने प्राइवेटली लिखा है ताकि दूसरे आपको बुरा ना समझे, भाई एक हकीकत है अनफॉर्चुनेटली, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, ठीक है। और उसकी वजह होती है कि औरतों के अंदर अल्लाह ताला ने जज्बात रखे हैं, इमोशंस रखे हैं, तो इमोशंस की वजह से जहां वो मोहब्बत ज्यादा करती हैं ना, वहीं पर वो नफरत भी ज्यादा करती हैं, और जब नफरत ज्यादा करती हैं तो जिससे नफरत होती है तो फिर उसकी बुराइयां सामने आती हैं। लेकिन औरत जो होती है वो तबीयी तौर पर कमजोर भी होती है ना, ठीक है, वो इतनी स्ट्रांग नहीं होती, फिजिकली स्ट्रांग नहीं होती, और यानी उसके आसाब भी इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते, ठीक है, तो इस वजह से ना वो किसी के सामने जा करके उसको बुरा भला नहीं कह पाती है। सामने जाके मुंह पर बुरा भला कहना औरत के लिए मुश्किल होता है, ठीक है ना, और ये कसरत यानी मेजोरिटी की बात हो रही है, वरना माइनॉरिटी में ऐसी औरतें भी होती हैं कि मुंह पर बुरा भला कहना वो बड़ी मतलब स्ट्रांग किस्म की होती हैं, ठीक है, लेकिन कसरत की बात होती हो रही है ना कि अक्सर के साथ क्या मामला होता है। तो चूंकि अक्सर जो होती हैं वो वीक होती हैं लेकिन जज्बात की स्ट्रांग होती हैं, तो इस वजह से नफरत हो जाती है किसी से, लेकिन उसकी नफरत का इजहार जो है वो उसके मुंह पर करने की बजाय अपनी कमजोरी की वजह से उसके पीठ पीछे करती हैं, ठीक है ना। जबकि मर्द के साथ ऐसा नहीं होता, एक तो मर्द के अंदर इमोशंस बहुत कम होते हैं, ठीक है ना, बल्कि औरतें शौहरों को कहती है ना कि ये तो बिल्कुल ही जो है ना वो जज्बात से आ रही है, इनको तो कुछ होता ही नहीं है, कोई असर ही नहीं होता। भाई क्यों असर नहीं होता उनको किसी बात का? आंसू भी नहीं आते और वो बहुत ज्यादा हंसना भी नहीं आता, तो भाई क्यों? इसलिए क्योंकि अल्लाह ने उनके अंदर जज्बात कम रखे हैं, ठीक है ना, तो चूंकि जज्बात भी कम रखे हैं तो वो किसी से अगर नफरत करते हैं तो वो नफरत भी जो होती है ना वो इतनी आगे नहीं बढ़ती जितनी कि औरत के अंदर आगे बढ़ जाती है, और अगर किसी से हो भी जाती है उनको नफरत तो चूंकि मर्द जो है वो एक आम तौर पर एक जरा ताकतवर इंसान होता है, तो वो फिर इंसान के यानी जिससे उसको नफरत होती है उसके मुंह के ऊपर बुरा भला कह देता है, उसको गीबत नहीं करता, लेकिन औरत जो होती है वो गीबत कर रही होती है। तो गीबत का जो अमल है ये औरतों में ज्यादा होता है, और यहाँ अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल किन औरतों की बात कर रहे हैं, किन औरतों को नसीहत कर रहे हैं? ईमान वाली औरतों को नसीहत कर रहे हैं, ठीक है, तो ईमान वाली औरतों को नसीहत कर रहे हैं गीबत से बचने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि औरतें ज्यादा गीबत में मुब्तला होती हैं। तो ईमान वाली औरत के लिए कौन सी चीज सबसे ज्यादा काबिल नफरत होती है? सबसे ज्यादा काबिल नफरत ईमान वाली औरत के लिए क्या चीज होती है? वो ये होती है कि उसको कहा जाए जानिया, उसको जानिया कहा जाए, ठीक है, यानी उसको बेहया बेशरम जानिया कहा जाए। ये ईमान वाली औरत के लिए सबसे ज्यादा काबिल नफरत चीज होती है, क्योंकि वो ये काम कर ही नहीं सकती, उसके तो वहमो गुमान के अंदर ये नहीं होता कि वो अपनी इज्जत को जो है वो दांव पर लगा दे, ठीक है, अपनी शर्म हया को जो है वो कुर्बान कर दे किसी की मोहब्बत में, ठीक है। तो इस तोहमत से, जिना वाली तोहमत से ईमान वाली औरत सबसे ज्यादा नफरत करती है, ठीक है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने गीबत की शिद्दत को समझाने के लिए उसको किस चीज से कंपेयर किया? जिना से कंपेयर किया, कि जिस तरह तुम जिना से शदीद नफरत करती हो ना, कि तुम्हें कोई जिना में मुब्तला होने का ताना दे, ठीक है, बेहयाई का ताना दे, तो ये याद रखो कि गीबत करना जिसमें तुम अक्सर मुब्तला हो जाती हो, ये जिना से भी ज्यादा बुरी बात है, ठीक है। ताकि एक औरत के, एक ईमान वाली औरत के दिल के अंदर बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये चीज कितनी ज्यादा बुरी है, कितनी ज्यादा शदीद नफरत के काबिल चीज है। ठीक है, ठीक है भाई, स्टैंडर्ड सेट कर दिया ना कि भाई जिस चीज को तुम सबसे ज्यादा बुरा समझती हो ये उससे भी ज्यादा बुरी है। ठीक है ना, सूद, सूद का औरत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, बहुत कम औरतें जो है वो मनी डीलिंग कर रही होती हैं, ये तो मर्दों का काम होता है, इन्वेस्टमेंट करना और कारोबार करना, और तो मर्दों को यानी सूद का पता होता है, औरत को क्या पता सूद का। उसी तरह जुआ खेलना, औरत को थोड़ी जाकर के जुआ खेलती है ईमान वाली औरत, राइट, फासिका फाजरा काफिरा की बात भी थोड़ी हो रही है कि वो जुआ खेलती है जाकर के, ये तो ईमान वाली औरत की बात हो रही है ना। ईमान वाली औरत को इन सब चीजों का नहीं पता होता, इन सब चीजों से उसका वास्ता नहीं होता, उसका वास्ता इज्जत हया शर्म इन चीजों से होता है। ठीक है, तो आप सरसरम ने गीबत की शिद्दत को जिना की शिद्दत के साथ कंपेयर करके बताया ताकि मामला बिल्कुल क्लियर हो जाए जहन के अंदर। इसके आगे फरमाते हैं कि इस हदीस से साबित हुआ कि गीबत एक ऐसा गुनाह है जिसमें हक़ुल्लाह की भी मुखालफत है और हक़ुल अब्द भी जाया होता है। ठीक है, गीबत में हक़ुल अब्द भी जाया होता है, ये बात तो आपको पहले से बता दी। हक़ुल्लाह कैसे जाया होता है, अल्लाह के हक की मुखालफत क्यों कह रहे हैं, कोई अगर आप से बताएं अल्लाह का हक कैसे जाया होता है गीबत में। जी कोई अल्लाह को तकलीफ तो नहीं दे रहे होते, अल्लाह को तो अजियत नहीं दे रहे होते कि अल्लाह ताला की बुराई कर रहे हैं, नाउज बिल्ला। तो हक्कुल अब तो समझ में आता है ना कि बंदे को तकलीफ हो रही होती है, अजियत हो रही होती है, उसकी इज्जत खराब हो रही होती है, अल्लाह की कौन सी इज्जत खराब कर रहे हैं जो कि अल्लाह का हक जाया हो रहा है। तो हक्कुल्लाह क्यों कहा, किंडरगार्टन लेवल का सवाल है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है ना कि कॉलेज स्टूडेंट से अगर आप केजी लेवल का कोई सवाल पूछें तो वो कॉलेज स्टूडेंट जो होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि यार पता नहीं कोई अजीब मुश्किल सा सवाल होगा, लेकिन असल में वो केजी लेवल का सवाल था। उसी तरीके से हम आपसे केजी लेवल का सवाल कर रहे हैं लेकिन आप कॉलेज स्टूडेंट्स होने के बावजूद उसका जवाब नहीं दे पा रहे। भाई अल्लाह का हक बंदे पर क्या है, अल्लाह का हक बंदे के ऊपर क्या है, नहीं ये जवाब सही नहीं है, अल्लाह के मखलूक के साथ बुरा काम हो रहा है। तो भाई वो तो हो गया ना, मखलूक के साथ बुरा काम जो हो रहा है तो उसकी खिलाफ वर्जी करी, तो हुकूकुल इबाद की खिलाफ वर्जी करी। हुकूकुल्ला, अल्लाह का हक क्या है हमारे ऊपर, इतना नहीं पता अल्लाह का हक क्या है। वही तो मैं कह रहा हूं केजी लेवल का सवाल है ना। भाई अल्लाह का क्या हक है, इबादत करना हक है, ला हौला वला कुव्वत। चले ठीक है, इबादत करना कहा तो जा सकता है, इबादत करना हक है, लेकिन आपने अगर इबादत का लफ्ज जो है वो उसके हकीकी मानों में इस्तेमाल किया है तब तो आपका जवाब सही है, लेकिन अगर जाहिरी मानों में इस्तेमाल किया है तो फिर जवाब गलत है। ठीक है, तो इबादत का हकीकी मानी क्या होता है, कम से कम इतना बता दें फिर हम क्लास खत्म कर देंगे। जी अता, ठीक है ना, अल्लाह की अताअत करना, और हकीकत में इबादत का मतलब अताअत होता है। तो अल्लाह का हक बंदे के ऊपर है अल्लाह के हुक्म को माना जाए। ठीक है, तो अल्लाह के हक की खिलाफ वर्जी क्या है, हुक्म को नहीं माना, हुक्म की खिलाफ वर्जी कर दी। तो भाई इस आयत में जिसके कि हम तफसीर पढ़े चले जा रहे हैं माशाल्लाह इतने दिनों से, राइट, इसमें अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वला यगतब बअदुकुम बअदा, ला यगतब, ठीक है, गीबत ना करो, राइट, गीबत ना करो, ये अल्लाह का हुक्म है। तो जब कोई गीबत करता है तो क्या कर रहा होता है, अल्लाह की हुक्म अदूली कर रहा होता है, राइट, अल्लाह का हुक्म नहीं मान रहा होता, तो ये अल्लाह के हक की खिलाफ वर्जी कहलाएगी। ठीक है ना, तो इस वजह से गीबत करना इस तरह से, क्योंकि आप अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर रहे हैं, तो इसमें अल्लाह के हक की खिलाफ वर्जी भी है और अल्लाह के किसी बंदे को तकलीफ पहुंचा रहे हैं तो इसके अंदर अल्लाह के बंदे के हक की खिलाफ वर्जी भी है। ठीक है, तो यही फरमा रहे हैं कि इससे हक़ुल्लाह भी जाया की भी मुखालफत होती है और हक़ुल अब्द भी जाया होता है, इसलिए जिसकी गीबत की गई है उसे मुआफ कराना जरूरी है। और बाज़ उलमा ने फरमाया, ये तफसीर इंशाल्लाह भी पढ़ेंगे इसलिए कि अदरवाइज काफी एक्स्ट्रा टाइम हो जाएगा। ठीक ठीक है, कोई सवाल अगर है तो अभी पूछ सकते हैं। वैसे गरीबत के मामले में अक्सर जो कन्फ्यूजन्स हमारे जहन में रहती हैं और जो सवालात पॉसिबली आ सकते हैं ना, तो वो इंशाल्लाह अगली क्लास में खुद भी आंसर हो जाएंगे, क्योंकि आगे की जो तफसील है उसके तहत ये सारी बातें आती हैं कि किन सूरतों में गीबत करनी जायज़ है और क्या चीज़ गीबत नहीं होती है। ठीक है, ये सारी तफसीलात इंशाल्लाह आगे आती हैं, तो अगली क्लास में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम।